सारी शक्ति एकत्र की, बहुत जोर से इस पर्वत को दबाया और फिर उन्होंने छलांग लगाई और किस प्रकार सारे वृक्ष उनके पीछे पीछे चल दिए और फिर आगे किस प्रकार की बाधाओं को पार करते हुए वे लंका तक पहुंचे। पहली बाधा आलमैनक पर्वत, जो उन्हें कुछ आनंद देना चाहता था। फिर आई सुरसा, सुरसा ने अपना मुंह बहुत बड़ा किया, हनुमान जी बड़े हुए, सुरसा और बड़ी हुई। और फिर आई सिंहिका, सिंहिका ये सूचक है द्वेष का। कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि कैसे मैनक पर्वत सूचक है सुविधाओं का, कि कैसे मैनक पर्वत उन सुविधाओं का सूचक है जो भक्ति में हमें मिलते हैं। सुरसा उस प्रवृत्ति की सूचक है जिसके द्वारा हम भक्ति में ऊंचे बनना चाहते हैं, बड़े होना चाहते हैं, तुलनात्मक दृष्टि। और सिंहिका ये सूचक है द्वेष की। सिंहिका ने क्या किया था कि जब हनुमान जी ऊपर से जा रहे थे तो नीचे उनकी छाया को पकड़ लिया था, हनुमान जी को नहीं पकड़ा था। तो ये सूचित करता है कि किस प्रकार हम लोग भक्ति में जब आगे बढ़ते हैं तो हम दूसरों के जो छाया है, परछाई है, या फिर कहना चाहिए जो काला हिस्सा है, अंधकारमय हिस्सा है, उसकी ओर ध्यान देते हैं। अर्थात हम दूसरों के दोष ढूंढते हैं, दूसरों की गलतियों को देखते हैं और ये द्वेष के कारण होता है। और साथ ही साथ बड़ा सुंदर दृष्टांत आचार्य समझाते हैं कि सिंहिका ने देखा कि हनुमान जी उनके ऊपर थे और उसको वो सहन नहीं कर पाए, इसीलिए तुरंत परछाई के द्वारा उनको नीचे खींच लिया। यही प्रवृत्ति भक्तों में आ जाती है जब द्वेष बढ़ता है कि हम किसी को अपने से ऊंचा नहीं देख पाते और तुरंत चाहते हैं कि उसको नीचे खींच दें। और किसके द्वारा? उसकी गलतियों के द्वारा, उसके जो दोष हैं उनके द्वारा। वैसे देखा जाए तो आत्मा ये प्रकाश का सूचक है। भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है, जो प्रकाश देता है, उसको ही आत्मा समझना चाहिए। तो आत्मा का लक्षण होता है, आत्मा ज्ञान से पूर्ण है और ज्ञान अर्थात प्रकाश, लेकिन द्वेष अहंकार ये हमारी काली तरफ है या डार्क साइड है। और जब भक्त केवल परछाई को या काले भाग को या दोषों को, गलतियों को देखते हैं दूसरों की, तो वे सिंहिका की तरह है कि जिस तरह सिंहिका ने हनुमान जी की परछाई को पकड़ा और वो सहन नहीं कर पाई कि हनुमान जी उसके ऊपर से उड़ रहे थे, इसी तरह एक द्वेषी व्यक्ति ये सहन नहीं कर सकता कि कोई उससे ऊंचा उठ जाए, चाहे वो भक्ति में हो या भौतिक जगत में। भौतिक जगत में तो ये नियम ही है कि कैसे किसी को नीचे खींचना, लेकिन वही प्रवृत्ति भक्ति में भी बनी रहती है। भले ही हम बाहरी दिखावे के लिए एक चोला धारण करते हैं, एक भक्त का चोला, लेकिन फिर भी वो प्रवृत्ति हृदय में बनी रहती है। और इस प्रवृत्ति से दूर कैसे जाया जाता है, ये हनुमान जी ने दिखलाया। हनुमान जी सीधे उसके हृदय में प्रवेश कर गए और उसके हृदय को भेद कर बाहर आए। कल हमने ये वर्णन किया था। तो हृदय अर्थात ये द्वेष, क्योंकि द्वेष ये हमारे बंधन का हृदय है। जो शरीर होता है इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात भाग हृदय होता है। हृदय अगर बंद हो जाए तो फिर सारा शरीर बंद, सब कुछ रहता है लेकिन शरीर काम नहीं करता। हाथ पांव कट जाए तो भी हृदय चलता रहे तो आदमी जीवित माना जाता है, लेकिन हृदय बंद हो जाए तो उसके प्राण निकल जाते हैं। हमारे भौतिक बंधन का हृदय द्वेष है, क्योंकि हम आए क्यों हैं इस भौतिक जगत में, क्योंकि द्वेष। हम भी भगवान बनना चाहते हैं, हम भी भोग करना चाहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, इसको स्वीकार नहीं करना चाहते। और इस द्वेष के कारण हम इस जगत में हैं और हमारा बंधन बढ़ता जाता है। बड़ी विचित्र बात है, भगवान की बड़ी ही विचित्र बात है कि भगवान की माया शक्ति इतनी प्रबल है, इतनी व्याप्त है कि हम लोग उसको देखकर भी पाते हैं। पश्यन अपि न पश्यति, हम लोग सुनते हैं, श्रवण करते हैं, आसपास उस चीज को देखते हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन जीवन में उतार नहीं पाते। ये द्वेष ये हमारे न केवल इस भौतिक जगत में आने का कारण है, बल्कि भौतिक बंधन को बढ़ाता जा रहा है। द्वेष के कारण हमारी इच्छाएं एक दूसरे के प्रति, जो हम लोग अलग अलग भावनाओं को प्रकट करते हैं, अपने को ऊंचा बनाने की इच्छा करते हैं, पूजा लाभ प्रतिष्ठा की कामना करते हैं, लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि ये द्वेष भक्ति में आने पर हम देखते हैं, जानते हैं कि ये द्वेष हमारे बंधन का कारण है। और न केवल बंधन का, कृष्ण से दूर रहने का यही एक कारण है द्वेष। हम जीवों से द्वेष करते हैं। जीवों से द्वेष क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास कुछ ऐसा है जो हमारे पास नहीं। और फिर जब ये प्रवृत्ति बढ़ती है तो कृष्ण से द्वेष करते हैं, क्योंकि कृष्ण के पास कुछ ऐसा है जो हमारे पास नहीं। तो इसलिए द्वेष एक तरफ तो हमारे भौतिक बंधन को बढ़ाता है और दूसरी तरफ कृष्ण से हमें दूर ले जाता है। हमारे सारे भक्ति मार्ग के पालन का मूल उद्देश्य नष्ट हो जाता है अगर हम द्वेष का पालन करते हैं। लोगों में दोष ढूंढते हैं उनके, और दोष ढूंढने वाला व्यक्ति जैसे सिंहिका वो जब छाया को पकड़ती थी तो असली व्यक्ति को ध्यान नहीं देती थी और असली व्यक्ति को खींच लेती थी नीचे। तो देखिए हनुमान जी भगवान की सेवा में बड़ी तीर तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन सिहिका ने उनकी परछाई को पकड़ लिया। इसी प्रकार जब कोई भक्त बड़ी तीव्रता से भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में आगे बढ़ता है, तो हम लोग द्वेष के कारण उसको खींच देते हैं, उसकी परछाई को पकड़ते हैं, उसके दोषों को इंगित करते हैं, उसकी गलतियों को बढ़ाते हैं। और ये भौतिक जगत का लक्षण है। और आध्यात्मिक जगत जहां जैसे ही देखा जाता है कि कोई भक्त भक्ति में आगे बढ़ रहा है, उसको प्रोत्साहन दिया जाता है, व्यक्ति खुश होता है, भक्त खुश होता है ये देखकर कि कितनी जल्दी ये प्रगति कर रहा है। और ये भावना श्रीमती राधा रानी से आती है। श्रीमती राधा रानी बड़ी प्रसन्न होती है जब वो देखती है कि कोई भक्त कृष्ण की सेवा के लिए आया है, भले ही बड़ा साधारण भक्त हो, कोई महान भक्त नहीं हो, छोटी सी सेवा करना चाहता हो, राधा रानी उसको कृष्ण के सामने ले आती है। ये बहुत महान भक्त है, ये आपकी सेवा करना चाहता है, इसकी सेवा स्वीकार कीजिए। ये भाव है श्रीमती राधा रानी का। वो सोचते हैं कि मुझसे अच्छी सेवा ये भक्त कर रहा है, इसलिए बढ़ावा देती है, प्रोत्साहन देती है। तो इसलिए ये सिहिका ये सूचक है द्वेष की। फिर हनुमान जी आगे बढ़े, हनुमान जी लंकिनी से मिले, और हमने कल सुना कि कैसे लंकिनी ने उनसे पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो, ये तुम्हारे लिए स्थान नहीं है, मैं यहाँ पर चोरों को लुटेरों को मैं रोकती हूँ। हनुमान जी बड़े क्रोधित हो गए, मैंने पूछा तुम कौन हो और मुझे ऐसे पूछने का तुम्हें क्या अधिकार है। लंकिनी ने हनुमान जी को चोर कहा था कि मैं चोरों को रोकती हूँ। हनुमान जी ने कहा सबसे बड़ा चोर तो अंदर बैठा है जिसकी तुम रक्षा कर रही हो, भगवान श्री राम की पत्नी को चुरा कर लेकर आया है, राक्षस है, और ऐसे व्यक्ति की तुम रक्षा कर रही हो। तो ये लंकिनी ये सूचक है मोह की, कि किस प्रकार व्यक्ति इस जगत में रहते हुए गलत गलत भ्रांत धारणाओं को ले लेता है, ग्रहण कर लेता है, मोह में पड़ जाता है। जैसे लंकिनी एक बहुत बड़े चोर को बचाने के लिए एक भक्त को चोर कह रहे थे, जिस तरह कई बार लोग भक्तों को जब भक्ति में आगे बढ़ने लगते हैं तो उनके प्रियजन, उनके परिवार के सदस्य, उनके अन्य रिश्तेदार उनको कहते हैं पागल है, ये सब ठीक नहीं है, ठीक है थोड़ा बहुत करना चाहिए। तो एक बंधन को पकड़ कर रखते हैं और मुक्त होने के मार्ग को त्यागने का प्रयास करते हैं, ये उस व्यक्ति को कहते हैं त्याग देना चाहिए। तो फिर हनुमान जी ने जोर से तमाचा लगाया, तो तमाचा अर्थात लंकिनी का वध किया, वध तो नहीं किया, लंकिनी को पराजित किया। तो ये कैसे पराजित कर सकते हैं हम लोग इस जगत में रहते हुए, कैसे इस भ्रांति से, कैसे इस मोहमय स्थिति से बाहर आते हैं, उसको हनुमान जी ने दर्शाया। और वो है कि जब हम भक्तों के संग में आकर श्रवण करते हैं और उसके द्वारा हमारी जो श्रद्धा है वो मजबूत हो जाती है, हम लोग दृढ़ निश्चयी हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं भक्ति में, और ऐसी स्थिति में हम किसी भी मोह को, किसी भी भ्रांति को पराजित कर सकते हैं। लेकिन जब तक व्यक्ति खुद दृढ़ निश्चय नहीं होता, खुद इन बातों को अच्छी तरह से नहीं समझता, जैसे कभी कभी हम लोगों को प्रचार करना पड़ता है बाहर जाकर, लोग प्रश्न करते हैं कैसे कृष्ण भगवान है, हमने तो सुना है शिव जी भगवान है, हमने तो सुना है गणेश भगवान है, आप कैसे कहते हैं। तो उस समय अगर हमें खुद विश्वास नहीं है कि कृष्ण ही भगवान है, हम कभी उस व्यक्ति को समझा नहीं पाएंगे। फिर हमारे सारे तर्क, हमारे सारे जितने भी हम उनको चीजें बतलाएंगे शास्त्रों से उदाहरण, सब व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि हृदय में विश्वास नहीं। तो ऐसा दृढ़ विश्वास, ये वो तमाचा है उस मोह के ऊपर, उस भ्रांत धारणाओं के ऊपर, लेकिन वो लगाने के लिए हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए, वो शक्ति होनी चाहिए। तो ऐसे लंकिनी को भी हनुमान जी ने तमाचा लगाया, थप्पड़ लगाया, और फिर लंकिनी ने प्रणाम किया आकर। तो ये और एक उदाहरण है हम भक्तों के लिए। हमारा आंदोलन प्रचार का आंदोलन है। हनुमान जी ने दिखलाया कि अगर हमारे अंदर दृढ़ विश्वास है तो तमाचा लगाने से वो भागी नहीं, उसका हृदय परिवर्तन हो गया। अर्थात हमारे दृढ़ विश्वास को जब हम दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तब दूसरों का हृदय परिवर्तन होता है, अन्यथा श्रम एव ही केवलम, केवल समय व्यर्थ होता है। इसीलिए भक्ति, इसका अर्थ है कृष्ण के प्रति प्रेम, रति। न उत्पादयेत यदि रतिम, श्रम एव ही केवलम। हम बहुत सारे भक्ति मार्ग को पालन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, भगवान के विग्रह की सेवा कर रहे हैं, लेकिन न उत्पादयेत, अगर उत्पन्न नहीं हो रहा है, यदि रतिम, वो रति, वो प्रेम, वो आकर्षण कृष्ण के प्रति, श्रम एव ही केवलम। और कैसी रति चाहिए, कैसा आकर्षण चाहिए, तीव्रता चाहिए, उनको देखने की तीव्रता, उनके बारे में श्रवण की तीव्रता, उनका नाम लेने की तीव्रता, और तब ये रति, ये आकर्षण बढ़ता है। तो हनुमान जी ने ये दिखलाया कि जब हमारे अंदर दृढ़ विश्वास हो जाता है तो कैसे हम दूसरों का हृदय परिवर्तन करते हैं। श्रील प्रभुपाद दृढ़ विश्वास था, कृष्ण ही भगवान है। जब उनको लोगों ने कहा कि ये इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस बनाइए, क्योंकि आप अगर कृष्ण लिखेंगे तो बहुत सारे लोग आएंगे नहीं, प्रभुपाद ने कहा नहीं, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, क्योंकि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और देखिए ये उनका दृढ़ विश्वास, आज लाखों लाखों लोग सारे जगत में कृष्ण के भक्त बन रहे हैं, उनका हृदय परिवर्तन हो रहा है। तो ये हमें चाहिए, ये भावना चाहिए। तो ऐसे हनुमान जी ने जब लंका में प्रवेश किया, लंकिनी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आप जाइए, आप श्री राम की सेवा कर रहे हैं और आप सफल होंगे, रावण का अंत आ गया है। अब हनुमान जी अंदर प्रवेश करते हैं छोटे से रूप में, पर हनुमान जी ने देखा कि बड़ी सुंदर नगरी है, बहुत विशाल नगरी थी और बड़ी ही सुंदर थी, क्योंकि इसको विश्वकर्मा ने बनाया था स्वयं। श्रीलंका या लंका, आज श्रीलंका या लंका जो भी कह लीजिए, ये एक पर्वत पर थी उस समय। उस पर्वत को त्रिकूट गिरी कहते थे। त्रिकूट गिरी अर्थात जिसके तीन चोटियां थी, त्रिकूट। और ये पर्वत वहां कैसे आया, इसका भी बड़ा सुंदर इतिहास है। एक समय ऐसा हुआ कि दो गंधर्व आपस में बैठे चर्चा कर रहे थे। एक ने कहा कि वासुकी, जो कि सर्पों के राजा हैं, ये बड़े शक्तिशाली हैं। तो दूसरे ने पूछा, क्यों ऐसा कहते हो? तो उन्होंने कहा कि देखो, जब भगवान मत्स्य अवतार में आए और कौन सा जल था, प्रलय का जल, प्रलय पयोधि जले धृतवान सिवेदम, भगवान आए अपने मीन अवतार में, मत्स्य अवतार में, तो कौन सा जल था, प्रलय का जल। और प्रलय का जल बड़ा ही तीव्र होता है, उसका प्रभाव बहुत तेज होता है, और ऐसे जल में महाराज सत्यव्रत की जो नाव थी उसको संभालने के लिए उन्होंने वासुकी का इस्तेमाल किया। और हम लोग ये भी जानते हैं कि समुद्र मंथन के समय भी वासुकी का इस्तेमाल हुआ था। तो गंधर्व कहने लगा कि देखो, भगवान ने मत्स्य अवतार में वासुकी का इस्तेमाल किया, इसलिए सबसे वो शक्तिशाली है। तो दूसरा गंधर्व कहने लगे कि भाई, हो सकता है वायु, इंद्र, वरुण, ये भी तो शक्तिशाली हो सकते हैं, इनको क्यों शक्तिशाली नहीं मानते। तो ये चर्चा चल रही थी कि वायु, हम जानते हैं वायु सर्वत्र है, सब जगह है। तो तुरंत वायु प्रकट हुए उनके सामने और कहने लगे कि ये क्या बेकार की बातें आप कर रहे हो, सब जानते हैं कि मैं शक्तिशाली हूं। और मैं सर्वत्र हूँ, सब जगह मैं वायु हूँ। तो उसने फिर दूसरा गंधर्व जो था वो स्वीकार नहीं कर रहा था, तो वायु ने कहा ठीक है एक प्रतियोगिता हो जाए, ये मेरु पर्वत है वासुकी को बुलाओ। तो वासुकी को बुलाया गया, वासुकी से कहा कि ये मेरु पर्वत है, तुम एक काम करो इसको चारों तरफ से पकड़ लो, अपने अपना जो शरीर है उसको चारों तरफ तीन बार ऐसे घुमाकर उसको तेज पकड़ लो जितनी तुम्हारी शक्ति है उसमें, और फिर मैं जोर से हवा चलाऊंगा, अगर मेरु पर्वत उड़ गया तो फिर तुम हार गए, और अगर नहीं उड़ा तो मैं हार गए, देखते हैं किसमें कितनी शक्ति है। यह अहंकार सबको रहता है, देवताओं को भी होता है, इंद्र को भी था। एक दिन मान इंद्र को मारो, नक ऊपर गोवर्धन धारो, नाम पढ़ो गिरधारी राधे श्याम श्याम श्याम। तो इंद्र को भी था, वायु को भी हो गया कि मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं। दरअसल ये अहंकार भक्ति मार्ग में स्वाभाविक है। एक स्थान पर ऐसा वर्णन है कि जब रावण उसका अंतिम समय आया और उसको बड़ा गर्व था उस समय तक अपनी शक्ति पर, लेकिन उस समय वो जान गया था अपने मन में कि अब मेरा अंत आ गया, क्योंकि सब मर चुके थे, बड़े बड़े सेनापति उसके पुत्र इत्यादि सब जा चुके थे। तो उस समय एक स्थान पर ऐसा वर्णन है कि रावण कहता है कि इतनी सारी शक्तियों के होने पर गर्व होना स्वाभाविक है। जिस व्यक्ति के पास इतनी शक्ति हो, रावण के पास क्या शक्ति नहीं थी, त्रिलोकेश्वर सारे देवता कांपते थे उसके सामने, तो ऐसी शक्ति होने पर अहंकार होना स्वाभाविक है। तो ऐसा ही कभी कभी भक्तों को जब बहुत सारा मान सम्मान मिल जाता है भक्ति में, भगवान की शक्ति के कारण, भगवान से जुड़ने के कारण, अन्यथा भक्तों के लिए क्या मान है, अन्यथा भक्तों के पास क्या है। श्रील प्रभुपाद को सारे जगत ने मान सम्मान क्यों दिया, क्योंकि वो कृष्ण से जुड़े थे, उन्होंने केवल कृष्ण भक्ति को प्रकट किया, इसीलिए उनका मान सम्मान। अन्यथा ऐसे कई लोग हैं जो तथाकथित अध्यात्मवादी हैं लेकिन लोग उनको स्वीकारते नहीं। तो इस तरह से वासुकी और वायु में युद्ध प्रारंभ हुआ। वासुकी ने जो मेरु पर्वत था उसको चारों तरफ से अपने शरीर से उसको दबा लिया, जोर से दबाने लगा, और यहां से वायु तेज चलने लगी, उसको उड़ाने के लिए वो हिलने लग गया। तो जब ये हुआ तो मेरु पर्वत ने सोचा कि अरे इसमें तीन लोगों का काम है, पहला वासुकी, वायु और मैं। दो लोगों ने तो आपस में चर्चा की लेकिन मेरे से किसी ने पूछा ही नहीं कि भाई तुम भाग लेना चाहते हो कि नहीं, तुम्हारे को हम लोग ऐसे तकलीफ दे या नहीं दे। देखिए अहंकार के कारण ये भी भूल गए कि जिसको तकलीफ देने वाले हैं अरे उससे तो पूछिए। तो फिर मेरु पर्वत ने कहा कि अगर ये बंद नहीं हुआ अभी का अभी तो मैं उल्टा हो जाऊंगा, और मेरु पर्वत के सारे जो अलग अलग ग्रह हैं वो उनको बताया गया है कि वो मेरु पर्वत पर टिके हुए हैं, और बहुत सारे और प्राणी इत्यादि। तो अगर मेरु पर्वत उल्टा हो जाए तो सारा ब्रह्मांड इधर उधर हो जाता। तो जैसे ही मेरु पर्वत ने धमकी दी, ब्रह्मा जी को आना पड़ा। ब्रह्मा जी एक्चुअली उनका कार्य ही यही है, जहां भी इमरजेंसी हो उनको जाना पड़ता है, यही उनका कार्य है। कहीं पर असुर बहुत बड़ी तपस्या कर लेता है, सारे देवता कहते हैं अरे अरे उसको संभालो, देखो क्या हो रहा है, हमारी सांस बंद हो रही है। ब्रह्मा जी जाते भाई इमरजेंसी सिचुएशन, बंद करो बंद करो। तो यहाँ भी एकदम अभी तो इमरजेंसी है, सारा ब्रह्मांड उल्टा हो जाएगा, मेरु पर्वत के अगर बंद नहीं, और ये लोग बंद करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अहंकार ने दिखाऊंगा मेरु पर्वत को उड़ा के दिखाऊंगा, तो मैं उड़ने नहीं दूंगा। तो फिर ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने सबको शांत किया, उन्होंने कहा वायु तुम बहुत शक्तिशाली हो, वासुकी को तुम भी बहुत शक्तिशाली हो, तुम्हारी शक्ति अपने स्तर पर बहुत ज्यादा है, तुम्हारी शक्ति अपने स्तर पर बहुत ज्यादा है, जैसे तुम देवताओं में बहुत शक्तिशाली हो, तुम नागों में बहुत शक्तिशाली हो। ऐसे शब्दों को मतलब ब्रह्मा जी भी एक्सपर्ट हो गए हैं इतने सालों में, इतनी सारी सिचुएशंस को संभालते हैं वो, तो कैसे किससे बात करना है, किसको क्या समझाना है। ऐसे वासुकी और वायु तो कई आकर चले जाते हैं उनके एक दिन में, तो वो समझाते रहते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने समझाया और फिर ब्रह्मा जी को मान देने के लिए वासुकी ने छोड़ दिया, वायु ने भी त्याग दिया। लेकिन जैसे ही वासुकी, क्योंकि बहुत तेजी से पकड़ा हुआ था, जब उसने छोड़ा तो मेरु पर्वत का एक छोटा सा टुकड़ा नीचे गिर गया और वो इस समुद्र में आकर गिरा और वो पर्वत बना त्रिकूट गिरी। फिर पर्वत बड़ा सुंदर था तो विश्वकर्मा ने इसके ऊपर बहुत ही सुंदर नगर की रचना कर दी, महल बनाए। और फिर जो राजाओं की, देवताओं की जो खजांची हैं, कोषाध्यक्ष कुबेर, उन्होंने इसको ले लिया और इस पर वो राज्य करने लगे। लेकिन जब उन्होंने इसको लिया तो रावण की जो माँ थी, हालांकि कुबेर भी विश्वा के ही पुत्र हैं, लेकिन उनकी दूसरी पत्नी से, लेकिन रावण की जो माँ थी उनको वो सहन नहीं हुआ। उन्होंने रावण को बुलाया, अपने बाकी संतानों को बुलाया, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, शूर्पणखा, खर, दूषण, ये सब भाई बहन। ऐसे बताया गया है कि ये लोगों में कोई ज्यादा अंतर नहीं था। एक स्थान पर वर्णन है कि ये लोग केवल हर एक 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 घंटा 45 मिनट बाद प्रकट हुए थे, उनका जन्म हुआ था। पहले रावण आया, उसके एक घंटा 45 मिनट बाद कुंभकर्ण, फिर विभीषण, फिर शूर्पणखा, फिर खर, फिर दूषण, ऐसे थोड़े थोड़े समय पर आए थे। तो इनकी जो माता थी उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा कि तुम लोग जाओ तपस्या करो, ये कुबेर हालांकि तुम्हारा भाई है लेकिन मेरे पति की दूसरी पत्नी से है, इसलिए मुझे पसंद नहीं है कि वो इस पर राज्य करे, तुम्हें लेना चाहिए ये राज्य, जाओ तपस्या करो। तो फिर सब गए, बड़ी घोर तपस्या सबने की। इस तपस्या के विषय में हम लोग सुन चुके हैं, रावण ने बड़ी घोर तपस्या की और अंत में जब ब्रह्मा जी आए तो रावण ने उनसे पूछा, भाई रावण से पूछा उन्होंने क्या चाहते हो, रावण ने कहा मरना नहीं चाहता हूँ, और क्या कहूँ, और कुछ मांगो। तो उन्होंने कहा ठीक है, इससे नहीं उससे नहीं, वानरों और मनुष्यों को तो मैं कुछ समझता नहीं हूँ, उनको छोड़कर आपकी बनाई हुई जितने भी सृष्टि में जितने भी जीव हैं उनसे मैं नहीं मरूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ब्रह्मा जी वैसे तथास्तु बोलने में बड़ी जल्दी करते हैं, हर समय बोल देते हैं। पिछली बार हिरण्यकश्यप को तथास्तु बोला था तो जब नरसिंह देव आए थे ब्रह्मा जी की ओर, उन्होंने ऐसे जब मार दिया, ऑपरेशन खत्म हो गया, तो उन्होंने ब्रह्मा जी की ओर तेरी नजरों से देखा था, अगली बार ऐसा कोई तथास्तु मत बोलना, तुम्हारे लिए मुझे आधा शरीर मनुष्य का और आधा शरीर जानवर का लेना पड़ा। नरसिंहदेव ने लिया। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने भृत्य अपने भक्त के शब्दों को सत्य करने के लिए सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, क्योंकि भक्त ने बोल दिया, कह दिया, ब्रह्मा जी ने ऊपर देखा नहीं, नीचे देखा नहीं, आगे सोचा नहीं, तथास्तु। क्या मांगा था हिरण्यकश्यप ने? अरे मनुष्य से नहीं मरूं, जानवर से नहीं मरूं, अंदर नहीं मरूं, बाहर नहीं मरूं, दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, नहीं मरूं, नहीं मरूं, नहीं मरूं, तथास्तु। तो फिर नरसिंह देव ने ऐसे देखा था, देखो अगली बार, ब्रह्मा जी घबरा गए थे, गए नहीं थे, इसलिए भागवत में वर्णन है, ब्रह्मा जी खड़े थे लेकिन हिम्मत नहीं हुई नरसिंह देव के पास जाने के लिए, क्योंकि तथास्तु बोला था। लेकिन फिर वो हो गया। लेकिन अब रावण ने कहा कि भाई मैं मनुष्यों और वानरों को छोड़कर आपकी बनाई हुई सृष्टि के जो भी जीव हैं उनसे किसी से नहीं मरूं, तथास्तु। तो ब्रह्मा जी ने सोचा होगा ये बोल तो दिया, क्या अभी भगवान जाने। दरअसल भगवान को वैसे कोई कार्य नहीं है, अपनी बांसुरी बजाते हैं, एक ही कार्य है। जब भक्त ऐसे कुछ चीजें करते हैं तो उनको संभालने के लिए भगवान को आना पड़ता है। जैसे अर्जुन बड़े आराम से सो रहे थे, भीष्म ने प्रतिज्ञा की कल पांडवों का वध कर दूंगा, और कृष्ण इधर से उधर टहल रहे हैं, अर्जुन सो रहे हैं, अर्जुन को उठाया, उठो भाई क्या है? तो अर्जुन ने कहा क्या हो गया, युद्ध शुरू हो गया क्या? नहीं युद्ध नहीं शुरू हुआ, रात है, लेकिन अरे मुझे चिंता हो रही है इतनी, भीष्म ने प्रतिज्ञा की है, वो भी भीष्म ने की है, कोई साधारण व्यक्ति ने की होती, किसी का क्या वो एफएम कुछ आ रहा है, एफएम क्या चल रहा है? हाँ पुलिस वालों के मैसेज कुछ लीजिए, एफएम पावर होता है। कहाँ पर क्या है? तो अर्जुन ने कहा कि हाँ क्या हुआ, युद्ध शुरू हो गया? उनके युद्ध नहीं, भीष्म ने की है, अगर कोई साधारण व्यक्ति ने की होते उसको रहने दो, अरे बोल उसको रहने दो, उससे कुछ नहीं होगा। अगर किसी साधारण व्यक्ति ने की होती तो ठीक था, भीष्म ने की है, मुझे इतनी चिंता है और तुम आराम से सो रहे हो, तो इसीलिए तो सो रहा हूं कि आपको चिंता है ना, आप चिंता कीजिए। तो भक्त ऐसे कर देते हैं, ब्रह्मा जी ने दे दिया तथास्तु, अब आप चिंता करो कैसे मारना है, उसको आप सोचते रहो, प्लान बनाओ, मैंने तो दे दिया, दिन में नहीं मरो, रात में नहीं मरो, सब दे दिया। वैसे रावण ने भी मांगा तथास्तु। वैसे जब नरसिंह देव आए थे, नरसिंह देव ने अपने आने के समय बहुत सारे सिद्धांतों को प्रस्तुत किया, जिसमें से एक ये सिद्धांत था कि भक्तों के वचनों को सत्य करने के सत्यम विधातुं मेरी प्रत्यभाषितम, और एक सिद्धांत था जैसे भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि जब तेषां अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा भवामी न चिराग पार्थ मैया वेशित चेतसान, कि मेरे भक्तों की रक्षा करने के लिए मैं तुरंत आता हूं, कोई समय नहीं लगाता। तो जैसे ही तलवार उठी प्रहलाद को मारने के लिए, भगवान प्रकट। तो इस तरह ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया, विभीषण के पास गए, कुंभकर्ण के पास गए, हम सब जानते हैं कुंभकर्ण बोलना चाहता था नित्यत्वम, नित्यत्वम मतलब नित्य बना रहूं। सारे देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी जाने वाले थे अपना, ब्रह्मा जी को मालूम है तथास्तु बोल देंगे, वो तो ब्रह्मा जी का ऐसा है कि वो व्यक्ति वचन पूरा करता है उसके पहले तथास्तु बोल देता है। तो पीछे से धोती पकड़ ली देवताओं ने, भाई ब्रह्मा जी किधर जा रहे हो, कुंभकर्ण के पास? हमने कहा अभी उसको कोई आशीर्वाद नहीं मिला है, तब वो जब भूख लगती है तो तीन चार देवताओं को ऐसे ही खा जाता है, और अब आप उसको ऊपर से आशीर्वाद दोगे तो हमारा क्या होगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, उसने तपस्या की है, मैं तो बंधा हुआ हूँ, मैं कोई भगवान तो नहीं हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आप थोड़ा रुको, सरस्वती देवी को कहा आप आगे जाओ, उसकी जीवा पर बैठो। तो फिर उसने कहा, कहने वाला था नित्यत्वम, नित्य बना रहूं, और थोड़ा सा जीव को टेढ़ा कर दिया तो निकला नित्यत्वम, सदैव सोता रहूं। और ब्रह्मा जी तथास्तु, ब्रह्मा जी ने तुरंत कह दिया भाई बहुत अच्छा है। तो फिर कुंभकर्ण ने कहा एक मिनट, कोई मूर्ख ही होगा जो 10,000 वर्ष तपस्या करेगा पर फिर क्या मांगेगा, सदैव सोता रहूं। तो ये सब देवताओं की चाल है, ये ठीक नहीं है। तो ब्रह्मा जी भी जानते तो थे कि चाल है, तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, 6 महीना सो, फिर उठना, खाना पीना और फिर सो जाना। कहा ठीक है, बोले मैं कुछ कर नहीं सकता, मैंने तो तथास्तु बोल दिया, मेरी आदत है। फिर उसके बाद विभीषण से पूछा, विभीषण ने कहा मुझे भगवान श्री राम की भक्ति चाहिए। तो रावण ने देखा एक पहले प्रहलाद आए थे, अब ये दूसरे आए हैं, ब्रह्मा जी आए हैं कुछ मांगना चाहिए अच्छी चीजें, ये क्या, ये असुर हो गया हमारे परिवार में। तो फिर ऐसे जब बहुत सारी शक्तियां उनको मिली, शिवपनखा ने मांगा कि मैं जैसे भी चाहूं अपना रूप बदल सकूं इत्यादि। तो जब ऐसी सारी शक्तियों को मिल गई तब फिर कुबेर को जाकर आक्रमण किया, कुबेर को हरा दिया, कुबेर को भगा दिया, उससे उसका पुष्पक विमान छीन लिया, उसका राज्य छीन लिया, और फिर वो लंका का राजा बन गया। तो ये लंका का इतिहास जैसे रावण के पास ही आई। तो फिर हनुमान जी देख रहे थे उसी लंका को, बड़ी सुंदर थी, बड़े 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 महल, लेकिन सारे लोग तमोगुण में, शराब की बदबू आ रही थी, नाचने गाने की आवाजें आ रही थी, लोग इधर उधर ऐसे ही पड़े हुए थे और सब वातावरण बहुत ही बुरा था, तामसिक वातावरण। अब ऐसे में हनुमान जी ढूंढने लगे, एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर जा रहे हैं, कहां देखें सीता देवी नहीं दिख रही हैं। अब पहले तो उन्हें सीता देवी पता भी नहीं थी कि कौन है, उन्होंने देखा नहीं था। जगन्नाथ उन्होंने देखा नहीं था सीता देवी को, और उस समय भगवान राम जंगल जाते समय फोटो भी लेने गए थे साथ में, उन्हें पता नहीं था कि हरण होने वाला, नहीं तो फोटो ले जाते बाद में देते कि भाई देखो ये सीता है, सारे पुलिस स्टेशन में लगा दो जहां भी दिखे, और उस समय ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन हनुमान जी ने केवल जब सीता देवी को ले जा रहे थे ऊपर से, और सीता देवी ने अपने गहने फेंके थे, तो एक झलक देखी थी सीता देवी दूर से, ठीक से नहीं, लेकिन फिर भी अब वो इतनी सारी वहां पर स्त्रियां थीं और सब स्त्रियों को देख रहे, लेकिन सीता देवी जैसी कोई स्त्री, क्योंकि सीता कैसी होगी इनके मन में एक कल्पना तो थी कैसी होंगी सीता, क्योंकि श्री राम की पत्नी है, सती है, तो स्वाभाविक है कि ऐसी तो हो नहीं सकती जैसी ही महिलाएं हैं। तो फिर हनुमान जी और आगे बढ़ते गए, एक महल से दूसरे महल, अलग अलग सैनिकों के महल में गए, सेनापतियों के महल में गए। वाल्मीकि रामायण में करीब दो अध्याय केवल यही वर्णन करते हैं कि कैसे हनुमान जी बड़ा प्रयास कर रहे थे, बहुत ढूंढा नहीं मिली। हनुमान जी सोचने लगे कि कहीं इन लोगों ने मार तो नहीं दिया सीता देवी, फिर हनुमान जी का नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। फिर वो गए आगे, फिर वो रावण के महल की ओर गए, बहुत विशाल महल रावण का, और उस महल में भी आसपास कई सारे छोटे छोटे महल थे जिसमें रावण के बहुत अंतरंगा पार्षद कहना चाहिए जो रहते थे, और फिर उनके महलों में देखा नहीं मिले। रामायण की रिपोर्टिंग हो रही है,
कहां से आ रहा है,
किसने एफएम शुरू किया होगा? ठीक है, खैर सारी दुनिया को सुनना चाहिए रामायण, कोई बात नहीं, अगर एफएम के द्वारा वो रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं तो कर रहे, कम से कम रावण तो सुन ले कहीं पर बैठा होगा। तो रावण के महल में गए, बड़ा विशाल महल, छोटे से थे हनुमान जी भी, अपना शरीर बड़ा नहीं किया था, धीरे से घुसे, देखा बड़ा विशाल सा बिस्तर, और वहां पर छत्र रखा हुआ था, सफेद रंग का छत्र, हनुमान जी समझ गए रावण है, क्योंकि छत्र केवल राजा के लिए होता है राज्य में। तो हनुमान जी को बड़ा क्रोध आ गया, ये रावण है, इसने सीता का हरण किया है। तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो देखता हूँ ये कैसा दिखता है। हनुमान जी कूट के बिस्तर के ऊपर आ गए और उन्होंने देखा, जब रावण यहाँ पर सोया हुआ था, उसकी भुजाएं, उसका शरीर और उसका चेहरा बहुत सुंदर था रावण। हनुमान जी ने बोला ये रावण है। हनुमान जी के मन में विचार आया, काश ये प्रचारक होता, भक्त होता, प्रचारक नहीं कम से कम भक्त होता। हनुमान जी के मन में विचार आया, तो कितना प्रचार करता भगवान श्री राम का, लेकिन देखो कैसे किन कार्यों में पड़ा हुआ। तो फिर उसके बाद रावण को उन्होंने देखा, रावण के पास जो महल थे जिनमें स्त्रियां थी उनकी, उसकी पत्नी, रावण के आसपास कई स्त्रियां थी जो अलग अलग वाद्य लेकर ऐसे ही लेटे हुए थे। फिर वो अलग अलग कमरों में उनकी रानियों के कमरों में जाने लगे, और एक समय हनुमान जी के मन में विचार आया कि अरे मैं ब्रह्मचारी हूं, ये रात के समय स्त्रियों के कमरे में, और वो भी स्त्रियां कुछ शराब पिए हुए कोई अस्त व्यस्त अवस्था में ऐसे ही पड़ी हुई हैं, एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई हैं। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, और हनुमान जी कह रहे हैं कि अरे माता जी को इस तरह देखना एक ब्रह्मचारी के लिए ठीक नहीं है, रात्रि के समय ऐसे कमरे में जाना। लेकिन फिर उनको ख्याल आया कि मैं श्री राम की सेवा के लिए कर रहा हूँ, इसलिए कभी कभी श्री राम भगवान की सेवा के लिए ऐसे कार्यों को भक्तों को करना होता है, ऐसे खतरे को मोल लेना होता है, प्रचार की दृष्टि से, सेवा की दृष्टि से। तो हनुमान जी चलते गए, मंदोदरी को देखा, बड़ी सुंदर थी मंदोदरी। हनुमान जी ने सोचे कहीं ये सीता तो नहीं है, लेकिन देखा कि मंदोदरी बड़े आराम से सो रही थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सीता नहीं हो सकती, क्योंकि इतना आराम से सो रही है, इनके मुख पर इतनी मुस्कान है, इतनी शांति है, ये सीता नहीं हो सकती। तो फिर ऐसे बहुत जगह घूमे, फिर उन्होंने पुष्पक विमान देखा। हनुमान जी उठकर विमान के ऊपर चढ़ गए और विमान से सारे शहर में देखने लगे। रात्रि का समय था, लेकिन कहीं सीता नहीं दिख रही थी। हनुमान जी बड़े दुखी हो गए, पुष्पक से उतरे, और फिर हनुमान जी सोचने लगे कि हो ना हो सीता देवी को इन्होंने मार डाला है। अब काफी समय हो गया, अब जब हनुमान जी आए थे तो करीब 10 महीने बीत चुके थे सीता को यहां पर आए हुए। तो उस समय सीता देवी को न देख पाने के कारण उन्होंने सोचा कि हो सकता है इनको मार दिया है। तो अब हनुमान जी सोचने लगे कि अगर मैं वापस गया किष्किंधा और वापस जाकर मैंने श्री राम को यह संदेश सुनाया कि सीता देवी का वध कर दिया है रावण ने, सीता देवी अब नहीं है, तो इस बात को सुनकर श्री राम तुरंत अपने प्राण त्याग देंगे, वो सहन नहीं कर पाएंगे, और उनको देखकर लक्ष्मण उनके प्राण त्याग देंगे। फिर जब लक्ष्मण प्राण त्यागेंगे और इस खबर को भरत सुनेंगे अयोध्या में, तो भरत अपने प्राण त्याग देंगे, शत्रुघ्न त्याग देंगे। और फिर क्या ऐसी अवस्था को देखकर कौशल्या सुमित्रा कैकेयी क्या वो अपने प्राणों को बनाए रखेंगी, वो भी प्राण त्याग देंगे। और सुग्रीव का क्या होगा जिसने इतनी मित्रता की है श्री राम से, वो अपने मित्र को बचा न पाने के कारण वो भी प्राण त्याग देंगे। और फिर सारे बंदर जो वानर हैं अंगद इत्यादि, सुग्रीव की पत्नी रूमा या तारा, ये सब भी अपने प्राण त्याग देंगी, और अंगद अपने प्राण त्याग देंगे, सारे वानर अपने ही हाथों से अपने ही मुंह पर मार मार कर सर पटक पटक कर जान दे देंगे, और कई वानर तो हो सकता है कि पर्वत से कूद जाए, कोई पानी में समाधि ले लें। ऐसे सब विचार हनुमान के मन में आने लगे। फिर हनुमान ने सोचा कि मैं ऐसा करता हूं, ये रावण का वध कर देता हूं, क्योंकि रावण ने वध किया है। फिर उन्होंने कहा नहीं, इसको पकड़ के श्री राम के पास ले जाता हूं। फिर उनके मन में एक विचार आया, थोड़ा समय और देखना चाहिए, हो सकता है सीता देवी यहीं कहीं हो, मैंने अभी ठीक से देखा नहीं हो। दरअसल हनुमान जी सेवा भाव प्रकट कर रहे थे कि अगर एक भक्त अपनी सेवा को, उनकी दी गई सेवा को पूरा नहीं कर पाए तो कैसा भाव उसका होना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि उसके जीवन का क्या लाभ है अगर वो भगवान की सेवा नहीं कर पाए। तो फिर हनुमान जी ने फिर से खोजना प्रारंभ किया कि शायद हो सकता है मैंने कई स्थान ना देखे हों। और फिर ढूंढते ढूंढते वो ढूंढ रहे थे, कहीं नहीं मिले थे। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि अचानक उन्होंने अशोक वन अशोक वाटिका देखी, लेकिन एक अन्य स्थान पर वर्णन है कि हनुमान जी ढूंढने लगे कहीं मिला नहीं, अचानक उन्होंने एक घर देखा जिस घर के आगे तुलसी थी, और उस घर पर भगवान श्री राम के धनुष और बाण का चिन्ह बना हुआ था। हनुमान जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि ये मैं जो देख रहा हूं ये सत्य है, यही मोह है, ये माया है। लेकिन उन्हें बड़ा आनंद आया, वो गए वहां पर, वो विभीषण का घर था, और फिर उन्होंने अंदर से विभीषण को भगवान श्री राम के नाम लेते हुए सुना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सुना कि ये तो अंदर से भगवान श्री राम का ले रहा है नाम, क्या कोई भक्त हो सकता है यहाँ पर? तो हनुमान जी ने सोचा क्यों नहीं, श्री राम के भक्त कहीं भी हो सकते हैं। तो उन्होंने तुरंत एक ब्राह्मण का वेश धरा और उन्होंने विभीषण को आवाज लगाई कि अरे भाई कौन है, थोड़ा बाहर आइए। तो विभीषण ने इस आवाज को सुना और विभीषण बाहर आए और उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण, क्योंकि असुरों की नगरी में ये ब्राह्मण, विभीषण भी बड़े आश्चर्यचकित हुए और विभीषण ने उनसे पूछा कि हे ब्राह्मण आप कौन हैं और आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं, क्योंकि आपको देखते ही मेरे हृदय में बड़ी प्रसन्नता हो रही है, तो ये प्रमाण है कि आप भगवान के भक्त हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप श्री राम ही हैं जो मेरी परीक्षा लेने के लिए या मुझ पर अनुकंपा करने के लिए यहां पर आए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भक्तों को अपने हृदय से दूसरे भक्त को पहचानने में मदद मिलती है। जब माधवेंद्र पुरी ने नित्यानंद प्रभु को देखा, नित्यानंद प्रभु से कभी मिले नहीं थे, जानते नहीं थे नित्यानंद प्रभु हैं, अचानक एक तरफ से माधवेंद्र पुरी आ रहे थे और दूसरी तरफ से नित्यानंद प्रभु आए, और जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को देखा उनके हृदय में इतना आनंद, इतनी प्रसन्नता हुई कि केवल उस प्रसन्नता से वो जान गए कि ये नित्यानंद प्रभु हैं और नित्यानंद प्रभु जान गए कि ये माधवेंद्र पुरी है। जब ईश्वरपुरी अद्वैत आचार्य के घर पे पहली बार गए, कोई नहीं जानता था ईश्वरपुरी को कि ये ईश्वरपुरी है, माधवेंद्रपुरी जा चुके थे, ईश्वरपुरी अब माधवेंद्रपुरी के द्वारा दिए गए उस प्रेम के बीज को पौधे के रूप में बढ़ा रहे थे। और उस समय जब वो वहां पर गए तो अद्वैत आचार्य ने उनको देखकर उनसे पूछा आप कौन हैं? ईश्वरपुरी ने कहा मैं एक बड़ा ही तुच्छ शूद्र व्यक्ति हूं। लेकिन जो आनंद अद्वैत आचार्य के हृदय में उनको देखकर हुआ, उस आनंद से वो पहचान गए कि ये ईश्वरपुरी ही हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा आनंद, ऐसा भक्ति का रस मेरे हृदय में उत्पन्न हो रहा है तो ये केवल ईश्वरपुरी हो सकते हैं। तो ये हृदय से, ये अगर भक्ति हमारे अंदर तीव्र है या हम नियमों का अच्छे से पालन करते हैं। हमारे अंदर तीव्रता कब आती है? जैसे हम लोग वर्णन कर रहे थे कुछ समय पहले लंकिनी का, कि लंकिनी ने भगवान की अगर भक्ति करनी है तो हमें दृढ़ होना चाहिए। तो ये दृढ़ता, ये द्वेष से हम दूर जाते हैं अगर हम भगवान की भक्ति में जितने भी नियम हैं उनका बड़ी दृढ़ता से पालन करते हैं। धर्म का पालन जब दृढ़ता से होता है तब फिर ये गुण हमारे अंदर प्रकट होता है। महाभारत में वर्णन आता है शांतनु महाराज का, या उनसे पहले भी महाराज दुष्यंत का, कि दुष्यंत महाराज जंगल में घूमते घूमते ऐसे ही चले गए और वहां पर शकुंतला को देखा और शकुंतला को देखकर उनके हृदय में उसके प्रति आकर्षण हुआ। हालांकि शकुंतला एक ब्राह्मण के घर से बाहर आ रही थी, एक ऋषि की कुटिया में थी, लेकिन राजा दुष्यंत को उनके प्रति आकर्षण हुआ और उन्होंने शकुंतला से कहा कि तुम कौन हो, तुम एक ब्राह्मण की पुत्री नहीं हो सकती, क्योंकि मैं एक क्षत्रिय हूं और एक क्षत्रिय होते हुए अगर मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति आकर्षण आ रहा है तो तुम ब्राह्मण की पुत्री नहीं हो सकते, तुम क्षत्रिय की पुत्री हो। और ये सत्य था। तो देखिए, जब नियम का पालन होता है, जब धर्म का पालन होता है, तब ये गुण अपने आप हृदय में आते हैं। तो जहां दो भक्त मिलते हैं, जैसे जब चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी को देखा, रामानुजाचार्य ने अपने गुरु को देखा, इतने असंख्य उदाहरण है जहां वो जानते नहीं थे एक दूसरे को, लेकिन केवल देखने से उनके हृदय में ये आनंद आया। और ऐसा ही आनंद विभीषण को आया। विभीषण ने देखा कि ये आनंद जो मेरे हृदय में आ रहा है ये केवल एक भक्त को देखने से आ सकता है। तो उन्होंने पूछा आप कौन है और उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं विभीषण। और फिर तो हनुमान जी ने अपना परिचय दिया कि मैं हनुमान हूं, मैं श्री राम का भक्त हूं और श्री राम की सेवा हेतु यहाँ सीता की खोज में आया हूं। अतः विभीषण बड़े प्रसन्न हुए और विभीषण ने गले लगाया हनुमान जी को और वो कहने लगे कि आज तक मैं ये सोचता था कि मेरे ऊपर प्रभु श्री राम की कृपा कभी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैंने एक असुर कुल में जन्म लिया है, राक्षस हूं मैं, नीच योनि में जन्म लिया है मैंने और रहता भी यहां ही हूं, ऐसे लोगों के बीच में जहां कोई भक्ति नहीं है। तो इसलिए निश्चित है कि भगवान मेरे ऊपर कृपा नहीं करेंगे। लेकिन आज आज मुझे ये विश्वास हो गया है कि एक ना एक दिन प्रभु श्री राम की कृपा मेरे ऊपर होगी। और क्यों ये विश्वास हुआ है मेरे हृदय में? क्योंकि जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती, जब तक भगवान की कृपा नहीं होती, हमें साधुओं का, संतों का, भक्तों का दर्शन नहीं होता। आज मुझे आपका दर्शन हुआ है हे हनुमान जी, तो इसलिए मैं जान रहा हूं कि ये निश्चित है कि एक दिन श्री राम की कृपा मुझ पर होगी। हनुमान जी ने उनसे कहा कि ये तो निश्चित है, आप तो कह रहे हैं आप असुर हैं, लेकिन मुझे देखिए, मैं एक वानर हूं और हमारी जाति ऐसी है कि अगर सुबह सुबह कोई हमें देख ले तो सारा दिन खराब जाता है उसका। लेकिन श्री राम ने मेरे जैसे वानर पर कृपा की है तो फिर आप पर क्यों नहीं करेंगे? भगवान बड़े कृपालु हैं, श्री राम कृपा करते हैं। तो ऐसा सम्मान हुआ और फिर हनुमान जी ने बताया कि मैंने सारी नगरी में देख लिया, सीता देवी नहीं मिली। और इस समय विभीषण ने बताया कि आप अशोक वाटिका में जाइए, आपको सीता देवी वहीं मिलेगी। तो ये भी एक स्थान पर ऐसा भी वर्णन है और वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि हनुमान जी ने सोचा कि बस ये अंतिम स्थान बचा है, अब इसको भी देखना चाहिए। तो फिर हनुमान जी अशोक वाटिका में प्रवेश करते हैं। अशोक वाटिका का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है क्योंकि ये रावण के राज्य की, सारी लंका की सबसे महत्वपूर्ण स्थान था, रावण का बड़ा अति प्रिय स्थान था ये। और इसमें बीच में 1000 खंभों वाला एक मंदिर बना हुआ था, मंदिर या एक ऐसा स्थान जहां रावण आता था, मंदिर के समान ही था। और वहां ऐसे बहुत सारे सुंदर सुंदर वृक्ष थे, फलों के, फूलों के पेड़ थे, बड़ा ही सुंदर रम्य वातावरण था। लेकिन हनुमान जी ने देखा कि बहुत सारी राक्षसियां वहां घूम रही थी, उस स्थान की रक्षा कर रही थी। फिर वो अंदर गए, अभी तक छोटे से ही थे, फिर कूद कर एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और वहां से देखने लगे कि कहां पर हैं, हो सकता है यहीं कहीं सीता देवी हों। और फिर जब ऐसे वो देख ही रहे थे तो फिर ऐसे ढूंढते उनको कहीं नजर नहीं आ रही थी राक्षसियां इत्यादि, और फिर उनमें उनको सीता देवी दिखाई दी। सीता देवी ने एक स्वर्ण रंग का कपड़ा धारण किए हुआ था, वैसे तो सारे शरीर पर धूल लगी हुई थी और कुछ खाने के कुछ खाती नहीं थी। कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि सीता देवी ने कुछ खाया नहीं था, हालांकि सब खाते पीते थे लेकिन सीता देवी नहीं खाती थी। तो कुछ न खाने के कारण उनका शरीर बड़ा जर्जर हो गया था, लेकिन फिर भी उनके चेहरे का जो तेज था उसको देखकर हनुमान जी पहचान गए कि यही सीता देवी है। हालांकि शरीर जर्जर है, सारे शरीर पर मिट्टी लगी हुई है, बड़ी दुखी है, विरह में है, लेकिन जो तेज उनके चेहरे पर था, भगवान की भक्ति का तेज, सदित्व का तेज, भगवान से प्रेम करने का तेज, भगवान के स्मरण का तेज, उसको हनुमान जी ने पहचान लिया। और फिर उन्होंने देखा कि कई राक्षसियां उनके आसपास हैं, उनको कष्ट भी दे रही हैं। तो हनुमान जी कुछ समय ऐसे ही रहे। हनुमान जी ने कहा ये समय ठीक नहीं है अभी जाने का, कुछ समय बाद जाऊंगा सीता देवी को, क्योंकि अचानक भी चले जाए तो सीता देवी तो जानती नहीं है उन्हें, तो शायद पहचान नहीं पाए, और फिर इतनी सारी राक्षसियां हैं। तो फिर ऐसे में अभी ये सारे विचार चल रहे थे कि अचानक हनुमान जी ने वेदों का उच्चारण होते हुए सुना। बड़े बड़े श्लोक कहने लगे लोग, श्लोकों का उच्चारण हो रहा था, नगाड़े बजने लगे। हनुमान जी एकदम हैरान हो गए कि ये वातावरण एकदम बदल कैसे गया। तो फिर उस समय दरअसल रावण को उठाया जा रहा था। तो देखिए, रावण को उठाने के लिए वेदों के श्लोक बोले जाते थे लंका में। वैसे रावण ब्राह्मण पुत्र था, विश्रवा का पुत्र, और वो खुद दक्ष था श्लोकों को कहने में, बहुत सुंदर श्लोक कहता था। कभी कभी देवता भी यज्ञ करने के लिए रावण को बुलाते थे कि अगर यज्ञ अच्छा होना है, यज्ञ में बहुत ही स्पष्ट मंत्रों का उच्चारण होना है तो रावण को बुलाना चाहिए। एक बार रावण एक यज्ञ कर रहा था और वहां पर अग्नि, यज्ञ में जाना है तो अग्निदेव जाने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा अग्निदेव को, देखो तुम्हारी पत्नी बहुत सुंदर है, उसको लेके मत जाना, यज्ञ रावण कर रहा है। तो अग्नि ने कहा, ब्रह्मा जी आप तो सब जानते हैं, धर्मों के ज्ञाता हैं, धार्मिक अनुष्ठान में पत्नी के बिना जाया नहीं जाता है, तो मैं कैसे जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरा काम था कहना, करना नहीं करना ये तुम्हारे ऊपर है, लेके जाना चाहो तो। वैसे भी उनकी पत्नी का नाम है स्वाहा। ब्रह्मा जी ने कभी लेके जाना चाहो तो स्वाहा। तो फिर अग्नि अपनी पत्नी के साथ आए, रावण बहुत सुंदर सुंदर उच्चारण कर रहा था, अन्य पुरोहित भी थे वहां पर, यज्ञ चल रहा था। अग्नि आए, अग्नि को आहुति देनी थी, उन्होंने आहुति दी, और देते समय पास में उनकी सुंदर पत्नी थी, तो रावण सारे यज्ञ को भूल गया। ये रावण की कमजोरी थी, सोना और सुंदर स्त्री। तो रावण ने देखा कि ये तो स्वाहा बड़ी सुंदर है, रावण ने उसका हाथ पकड़ा और चल दिया। अब रावण को कौन रोकेगा, त्रिलोकेश्वर। सारे पुरोहित यहाँ पे बोल रहे थे, अरे अरे कम से कम पूर्ण आहुति तो करके जाओ, अभी बाकी है। रावण ने कहा, वो सब आप कर लेना, मेरी पूर्ण आहुति तो हो गई है, मैं तो चला। तो रावण की जो पत्नियां थी बड़ी सुंदर सुंदर थी, बहुत स्थानों से थी, और वाल्मीकि रामायण में वर्णन करते हैं कि ऐसा नहीं था कि सब भय के कारण आई थी उसके पास। ज्यादा से ज्यादा जो उसकी पत्नियां थी वो उससे प्रेम करती थी। एक स्थान पर ऐसा वर्णन है कि वैसे रावण बहुत सुंदर लगता था, देखने में बहुत सुंदर था, केवल जब उसको क्रोध आता था तो उसका चेहरा विकृत हो जाता था, अन्यथा वो बहुत सुंदर था रावण। तो सारी जितनी स्त्रियां, और ऐसे बताया कि प्राय हर योनि से उसकी एक पत्नी थी, जहां जाता था वो ले आता था एक पत्नी। तो इस तरह से रावण की काफी पत्नियां थी, और मंदोदरी का भी वर्णन किया गया है कि बहुत सुंदर थी वो। तो फिर रावण को उठाया जा रहा था मंत्रों से, फिर रावण आया, उठते ही उसको सीता का स्मरण हुआ और उसने कहा कि मैं अशोक वाटिका में जाऊंगा। तो फिर रावण अभी अशोक वाटिका में आ रहा है, उसके आसपास कई स्त्रियां, उसके सारे सैनिक, उसके सेवक, और क्योंकि राजा था और वो भी कोई साधारण राजा नहीं। तो फिर रावण आया अचानक सीता देवी के सामने, हनुमान जी इस दृश्य को देख रहे हैं। वैसे उससे पहले जब हनुमान जी ने सीता को देखा, उनकी अवस्था को देखा, तो हनुमान जी सोचने लगे, वाल्मीकि रामायण में बहुत सुंदर वर्णन है कि हनुमान जी की क्या अवस्था हुई। आप देखिए हनुमान जी कितने शक्तिशाली थे, सीता को मारा, सुरसा से भिड़े लंकिनी को मारा, बड़ी शक्ति थी, सारी कठिन अवस्थाओं में उनको कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब उन्होंने सीता देवी की अवस्था देखी, तो वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि मुनि वर्णन करते हैं कि उनकी आंखों में आंसू आ गए, हनुमान जी रोने लगे, उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे सीता की ऐसी अवस्था को देखकर। पर वो सोचने लगे कि ये वही सीता है जिसके लिए वाली का वध हुआ, ये वही सीता है जिसके लिए 14,000 सैनिकों को एक साथ मारा गया, ये वही सीता है जिसके कारण सुग्रीव को उसका राज्य मिला, सारे वानरों का राज्य, जो शायद कभी नहीं मिलता। वाली कभी राज्य नहीं देता, लेकिन केवल सीता के कारण मिला, ये वही सीता है। जिसके लिए मैंने इतना बड़ा समुद्र लांघा है, ये सब सीता के लिए ही किया था। इतने सारे सैनिकों को मारा, खरदूषण को मारा, फिर भगवान वन में घूमे, वाली का वध किया और अन्य असुरों को मारा, कबंध को मारा। तो हनुमान जी सोचने लगे ये वही सीता है, और फिर वो सोचने लगे वही सीता है जो बड़ी कोमल है, जिसने राज घराने में जन्म लिया है, जो हल से निकली है। हम सब जानते हैं कि सीता देवी जब जनक महाराज हल चला रहे थे तो खेत से निकले थे, मिले थे, तो वही सोचने लगे कि वही सीता है जो हल में हल चलाते हुए जनक महाराज को मिली, और जनक महाराज ने बड़े प्रेम से बड़े प्यार से इसको पाला, कभी कोई कष्ट नहीं होने दिया। और इतना ही नहीं, जब वन में भी आई, जब पहले अयोध्या में आई, जब पहले अयोध्या में आई
तो उस समय भी क्या हो
गया, हरे कृष्ण। तो वो सोचने लगे कि जब वो अयोध्या में भी आई तो कौशल्या देवी इत्यादि ने बड़े संभाल कर रखा उन्हें, कोई कष्ट नहीं होने दिया। विवाह के करीब 12 वर्ष तक वो अयोध्या में रही, कोई कष्ट नहीं हुआ। लेकिन अब इस अवस्था में, और जब वन में भी आई श्री राम के साथ, तो श्री राम ने पूरा रक्षण किया, कोई कष्ट नहीं होने दिया। और आज ये एक ऐसी अवस्था में है, ऐसी दुखी अवस्था में, उन्होंने खाया नहीं था, उनके मुख से आवाज भी नहीं निकल रहे थे, पर हनुमान जी की आंखों में आंसू आए। वो हनुमान जो बहुत शक्तिशाली है, वो हनुमान जो बड़ी बड़ी राक्षसियों से भिड़ गए, वो हनुमान जो आगे चलकर रावण तक को चुनौती देने वाले हैं, लेकिन सीता देवी की दशा को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे हनुमान जी। पर फिर इतने में रावण वहां से आए। फिर रावण जब अशोक वाटिका में आया तो सीता देवी बड़ी घबरा गई। अचानक उन्होंने अपने आप को छुपाने का प्रयास किया। रावण ने आकर सीता देवी से कहा, पहले तो रावण ये चाहता था कि सीता स्वीकार कर ले। दरअसल रावण को ऐसा श्राप था कि अगर वो किसी भी स्त्री के साथ जोर जबरदस्ती करेगा, उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ विवाह करेगा, तो फिर रावण का सर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इसलिए रावण ने जोर नहीं किया सीता देवी से। फिर रावण आकर अपना गुणगान करने लगा, सीता देवी को कहने लगा, तुम जानती नहीं हो तुम किसके सामने खड़ी हो, इस सारे त्रिलोक में, इस सारे तीनों भुवनों में मेरा सामना करने वाला कोई नहीं है, मेरे रूप पर इतनी सारी स्त्रियां मर रही हैं, और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, और ये जान लो कि मैं तुम्हें वचन देता हूं, मंदोदरी इत्यादि, मंदोदरी वहीं पर खड़ी थी उस समय, मंदोदरी इत्यादि जितनी भी मेरी पत्नियां हैं वे तुम्हारी दासी बनेगी, ये मेरा वचन है। तुम्हें ऐसा ऐश्वर्य दूंगा तुमने कभी देखा नहीं होगा, तीनों भुवनों का ऐश्वर्य, और बड़े प्रेम से रखूंगा, तुम क्यों नहीं मुझे स्वीकार करती हो, तुम जानती नहीं हो मैं जहां जाता हूं, जिस दिशा में जाता हूं लोग थर्राने लगते हैं, ऐसा कोई स्थान नहीं है जो मैंने जीता नहीं है, सब तरफ चारों तरफ विजयी हुआ हूं मैं। मैंने अपना बहुत गुणगान करने लगा रावण, सीता मुझे स्वीकारो। तो वो सब सुनने के बाद सीता देवी ने एक घास का तिनका लिया और अपने और रावण के बीच में रख दिया। ये सूचक था कि सीता देवी एक सती होने के कारण किसी भी पुरुष से सीधे बात नहीं करते थे। तो सीता देवी ने कहा कि हे रावण, सीता देवी ने पहले समझाया कि देखो रावण, मेरी इच्छा मत करो, मैं अपना सर्वस्व श्री राम को दे चुकी हूं, मैं केवल श्री राम के लिए बनी हूं, और ये सीता देवी का गुण था। हालांकि रावण इतना उन्हें कष्ट दे रहा था, इतना प्रलोभन दे रहा था, लेकिन एक क्षण के लिए भी सीता देवी के हृदय में रावण के प्रति या अन्य किसी पुरुष के प्रति कोई बात बात नहीं आई। और जब अग्नि परीक्षा होने के बाद जब अंत समय में भगवान श्री राम ने सीता देवी को त्याग दिया था, तो उस समय सीता देवी ने इस बात की पुष्टि की। उन्होंने धरती से कहा, धरती माता से कहा, यथा राघवालन्यम मनसापि न चिंतये तथा मे माधवी देवी। उन्होंने बताया कि यथा राघवाल अन्यम, अगर कभी भी मेरे जीवन में भगवान श्री राम राघव इनके अलावा किसी भी पुरुष का स्मरण नहीं किया, तो हे माधवी देवी, हे धरती माता, आप मुझे स्थान दीजिए। और धरती माता ने दिया, इस बात की पुष्टि की। तो उन्होंने कहा रावण से कि रावण, तुम ये बात भूल जाओ कि मैं कभी भी तुम्हारी पत्नी बनूंगी। और फिर वो रावण को कहने लगी कि तुम जानते नहीं हो श्री राम की शक्ति को, अभी बस कुछ ही समय है, अभी अभी राम और लक्ष्मण के तीरों से ये वर्षा हो जाएगी, यहां पर तीरों की वर्षा, और तुम अपने परिवार सहित मारे जाओगे। तुम अपने आप को बहुत शक्तिशाली मानते हो, लेकिन मेरी बात सुनो, कमल का पुष्प जुगनू के प्रकाश में कभी नहीं खिलता। कमल का पुष्प, इसके लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, तब वो खिलता है। अर्थात वो क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे कि तुम जुगनू के समझ, जुगनू जानते हैं ना आप लोग, महाराज ने क्या बोलते हैं, ठीक है आप लोग समझ से, वो चमकता है जो रात में छोटा छोटा एक बना, तो उसके अंदर भी चमक होती है। तो सीता देवी ने कहा कि जुगनू की चमक से कमल नहीं खिलता है। अर्थात वो कह रही थी कि तुम जितना बड़ा ऐश्वर्य दिखला रहे हो कि मैं त्रिलोक का राजा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये तुम्हारा सारा ऐश्वर्य है श्री राम के सामने वैसा है जैसे सूर्य के सामने एक जुगनू। जब सूर्य आता है तो जितने भी जुगनू है वो सब केवल रात में, जब सूर्य नहीं है तब छोटे 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 उनका प्रकाश थोड़ा सा दिखाई देता है, लेकिन एक बार सूर्य आया तो सारे जितने भी जुगनू है समाप्त हो जाते। तो उन्होंने कहा, यानी वो बतला रही थी, अपने आप की तुलना कमल से कर रही थी, रावण की तुलना जुगनू से और भगवान श्री राम की सूर्य से। तो इसको सुनकर रावण बड़ा क्रोधित हो गया, क्योंकि रावण को ये आदत नहीं थी कई सालों से कि कोई उनका विरोध करे, केवल सीता देवी कर रही थी। तो रावण बड़ा क्रोध में आया और रावण ने अपनी तलवार निकाली, चंद्रहास, उसका एक विशेष खड़क है, तो रावण ने निकाला। और रावण ने कहा कि सीता, मैंने तुम्हें बहुत समय दिया, लेकिन तुम मेरा अपमान कर रही हो और इस अपमान को मैं सहन नहीं कर सकता, अभी इसी समय मैं तुम्हारा वध करूंगा। और उसने तलवार निकाली और ऊपर उठाई, सीता देवी तैयार हो गई। सीता देवी ने वर्णन किया, रावण से प्रार्थना नहीं की, उन्होंने चंद्रहास से प्रार्थना की कि हे चंद्रहास, मेरे हृदय में जो कष्ट है, मेरे हृदय में जो विरह है श्री राम की, जिसके कारण मुझे अथाह कष्ट हो रहा है, समाप्त कर दो इसे, काट डालो मेरा सर, अब मैं सहन नहीं कर सकता। तैयार हो गई सीता देवी, रावण भी तैयार था। और जैसे ही रावण बढ़ने लगा सीता देवी की ओर, मंदोदरी सामने आई और मंदोदरी ने रोका रावण को। मंदोदरी ने कहा, स्त्री है, इसका वध करना आपको शोभा नहीं देता, छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, आपकी इतनी पत्नियां हैं, मैं आपकी पत्नी हूं। अर्थात मंदोदरी ये कहना चाह रही थी कि इतनी पत्नियां हैं आपकी, एक से एक सुंदर पत्नी है, क्यों इस स्त्री के पीछे पड़े, क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो उसके पीछे। तो फिर रावण रुक गए और रावण ने सीता को कहा, 2 महीने का समय देता हूं तुम्हें, अंतिम 2 महीने, और अगर इस 2 महीने में तुमने मेरी पत्नी बनना स्वीकार नहीं किया तो फिर मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। और फिर जाते जाते उन्होंने रावण ने आदेश दिया जितनी सारी वहां पर राक्षसियां थी उनको कि तुम सबका ये कार्य है कि इसको इतना कष्ट दो या इसको समझाओ कि ये मुझसे विवाह करने के लिए तैयार होने चाहिए, और अगर ये 2 महीने में तैयार नहीं हो तो 2 महीने समाप्त होते ही अगले दिन सुबह इसको काटकर मेरे लिए नाश्ते में प्रस्तुत करो। मैं इसका खून पीऊंगा और इसका जो शरीर है उसको टुकड़े करके ब्रेकफास्ट में दे देना मुझे। और ये कहकर फिर रावण चले गए। तो जब रावण गए तो बाकी जो सारी राक्षसियां थी वो सीता से कहने लगी, तुम पागल हो सीता, अरे रावण त्रिलोकेश्वर जिसके पास इतना ऐश्वर्य है, इतनी सारी पत्नियां हैं, वो तुमसे आकर कह रहा है विवाह कर लो, पर तुम उससे नहीं, एक राम एक साधारण मनुष्य के पीछे पड़ी हुई हो, क्या है उसमें, जंगल में रहता है, राज्य भी नहीं है उसका तो, और पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन यहां रावण क्यों नहीं उससे शादी कर लेती। दूसरी ने कहा, ये तो सुनने वाली नहीं है, एक काम करे हम ही इसको मार देती हैं ताकि हमारे राजा को ये पाप नहीं लेना पड़े। तो ऐसे सब जब बातें कर रही थी, सीता देवी बड़ी दुखी हो रही थी, कोई उपाय नहीं था, कोई उनकी रक्षा करने वाला नहीं था, तो एक राक्षसी थी, थोड़ी वृद्ध राक्षसी जिसका नाम था त्रिजटा, तो वो वहां पर आई और उसने सबको हटाया, तो कहा जाओ जाओ तुम तंग मत करो इनको। और फिर उसने बताया सब राक्षसियों को कि देखो मैं आपको बताती हूं कि मैंने एक बहुत विचित्र स्वप्न देखा है। मैंने स्वप्न में देखा है कि श्री राम एक पर्वत के ऊपर विराजमान है और रावण ये नग्न अवस्था में तेल में डूबा हुआ है सारा शरीर इसका, और विभीषण को राज्य दिया गया है, विभीषण राजा हो गया है, और बाकी सारी स्त्रियां विलाप कर रही हैं, रावण की पत्नियां। अर्थात मैंने ये देखा है कि बहुत जल्द श्री राम यहां आने वाले हैं, समुद्र पार करेंगे और वो यहां पर आएंगे और फिर रावण का वध करेंगे और विभीषण को राज्य सौंपेंगे। तो इसलिए तुम लोग सीता को कष्ट मत दो। रावण अपने जो भी उसकी मन की इच्छा है उसको कभी पूरा नहीं कर पाएगा। तो ये सुनकर सारी जो राक्षसियां थी वो चली गई। त्रिजटा को सीता देवी ने बहुत धन्यवाद दिया, उन्होंने उसको सांत्वना दी कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, राम बहुत जल्दी आएंगे, और ये कहकर वो भी चली गई। और यहां पर सीता देवी अकेले ऐसी अवस्था में सोचने लगी कि अभी 1-2 महीने का समय है, पता नहीं श्री राम कब आएंगे, और उनके आने तक पता नहीं ये रावण मुझे रहने देगा या नहीं रहने देगा, हो सकता है मुझे मार डाले, लेकिन अगर वो मारे या ना मारे लेकिन मैं इस कष्ट को सहन नहीं कर सकती, अब श्री राम से विरह मुझसे सहन नहीं होती, और फिर इस रावण का कोई भरोसा नहीं है, इसके शब्दों का क्या भरोसा, क्या 2 महीने तक रुकेगा ये, हो सकता है मुझे मार डाले, तो फिर इसके हाथों मरने से अच्छा है मैं स्वयं ही मर जाती हूं, मैं स्वयं अग्नि में या तो प्रवेश कर जाती हूं या फिर अपने इस पेड़ से फांसी लगा लेती हूं। दरअसल हनुमान जी ने भी ऐसा ही सोचा था, जब हनुमान जी को सीता देवी नहीं मिली, बहुत कष्ट में आए, तो हनुमान जी ने सोचा कि मेरा वापस जाने का क्या लाभ है, भगवान ने एक सेवा दी मैं पूरा नहीं कर पाया, तो इससे अच्छा है कि मैं यहीं पर एक भिक्षुक बनकर घूमता हूं, जो मिलेगा वो खा लूंगा। फिर हनुमान जी ने सोचा कि नहीं नहीं भिक्षुक भी नहीं, मुझे तो अग्नि लगाकर उसमें प्रवेश कर जाना चाहिए या फिर जल में प्रवेश कर जाना चाहिए, क्योंकि मैं सेवा पूरी नहीं कर पाया। ऐसा हनुमान जी का भाव था कि मैं वापस नहीं जाऊं। उसी तरह भी यही सोचने लगी कि ऐसे जीवन का क्या लाभ है, मुझे तो अपने प्राण त्याग देने चाहिए। और ऐसे समय में जब सीता देवी ऐसी बातों को विचार कर रही थी, प्रायः अपने प्राण देने ही वाली थी कि हनुमान जी उनके सामने प्रकट होते हैं। और हनुमान को देखकर सीता देवी सोचती हैं, ये रावण है, हनुमान नहीं है, ये वानर नहीं है, ये रावण है। अभी अभी आया था ना, और अब ये दूसरे रूप में आया। सीता देवी कहने लगी, चले जाओ, तुम अलग अलग रूप में मेरे सामने आओगे तो ये मत मानना कि मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगी। तो हनुमान जी को समझ में आया कि सीता देवी उनको रावण मान रहे हैं। तो फिर हनुमान जी ने श्री राम का गुणगान करना प्रारंभ किया। भगवान श्री राम ने गुणों को बताया, जिसको सुनकर बहुत आनंद हुआ हृदय में सीता देवी के, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं हुआ कि ये रावण नहीं था, क्योंकि रावण बड़ा मायावी था। क्योंकि रावण बड़ा मायावी था, कोई भी रूप ले सकता था। तो सीता देवी को विश्वास नहीं हुआ, भगवान श्री राम का और गुणगान किया हनुमान जी ने, सीता देवी के हृदय में आनंद आया। आचार्य समझाते हैं कि ये गुणगान बड़ा महत्वपूर्ण है। वे बताते हैं कि जैसे हनुमान जी ने भगवान का गुणगान किया और सीता देवी के हृदय में आनंद आया, ऐसे ही जब भक्त भगवान का गुणगान करते हैं, रामायण महाभारत भागवतम अन्य पुराण इत्यादि से, तो जो जीव इस बद्ध अवस्था में है, इस रावण की नगरी में है, लंका में है, कष्ट सह रहा है इस भौतिक जगत में, जैसे सीता देवी के लिए लंका थी वैसे ही जीव के लिए भौतिक जगत है। तो जब ऐसा गुणगान होता है तो फिर हृदय में आनंद आता है, जैसे सीता देवी को आया। और फिर सीता देवी ने उनसे कहा कि अगर तुम श्री राम के सेवक हो, श्री राम के दूत हो, तो कुछ ऐसी बातों को बतलाओ जिनको सुनकर मैं ये जान जाऊं कि तुम श्री राम के बड़े निकट के भक्त हो। तो फिर श्री राम और लक्ष्मण के ऐसे गुणों का वर्णन हनुमान जी ने किया, पहले उनकी सुंदरता का वर्णन किया, फिर उनके गुणों का वर्णन किया, और फिर अंत में हनुमान जी ने वो अंगूठी, वो मुद्रिका जो श्री राम ने हनुमान जी को दी थी, उसको उन्होंने सीता देवी को दिया। और जैसे ही उस मुद्रिका को सीता देवी ने देखा तो उसको देखकर उनको स्मरण हो आया उस उंगली का जिसमें भगवान इसको धारण करते हैं, फिर भगवान के हाथ का, फिर भगवान के शरीर का। और सीता देवी भूल गई, सारे कष्टों को भूल गई, रावण को भूल गई, लंका को भूल गई। और फिर ऐसे में वो केवल श्री राम के सानिध्य में रहे। आचार्यों ने समझाया है कि अंगूठी देना ये मंत्र के समान है। जब गुरु हमें मंत्र देते हैं, जैसे हनुमान जी ने अंगूठी दी, और वो अंगूठी प्राप्त कहां से हुई थी? भगवान से। प्राप्तस्य कहां से प्राप्त करते हैं? हम लोग रोज सुबह गाते हैं कि जो गुरु हैं ये जो बादल के समान है, संसार दावा नल लीध लोका प्रणाय कारुण्य घना घनत्व प्राप्तस्य कल्याण गुणाणवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। ये जो गुरु हैं ये कृपा को प्राप्त कहां से करते हैं? हनुमान जी ने ये मुद्रिका प्राप्त कहां से की? भगवान से। तो जब गुरु मंत्र देते हैं, जैसे हम लोग मंत्र का उच्चारण करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, तो उस मंत्र के द्वारा जैसे सीता देवी को मुद्रिका के द्वारा भगवान का स्मरण हुआ, भगवान का संग प्राप्त हुआ, उसी तरह केवल मंत्र के द्वारा और खास करके इस कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में एक ही आधार है, कलि काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, भगवान आए हैं अपने नाम के रूप में, क्योंकि ये जो नाम है, ये जो मंत्र है, इसके द्वारा हमारा संबंध स्थापित होता है भगवान श्री राम से और भगवान श्री कृष्ण से। और जब तक जीव संबंध स्थापित नहीं करता तब तक वो आनंद की प्राप्ति नहीं करता। तो ये मंत्र, ये महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र, ये वो कड़ी है जिससे हम अपना संबंध स्थापित करते हैं भगवान श्री कृष्ण से, और फिर धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ते हैं, और फिर आगे बढ़ते हुए हम भगवान के धाम को प्राप्ति करते हैं, भगवान के चरणों की प्राप्ति करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने बड़ा सुंदर समझाया चैतन्य लीला में कि किस प्रकार ये जो बीज हमें प्राप्त होता है भक्ति का, भक्ति लता बीज, ये धीरे धीरे बढ़ता है। पहले हृदय में थोड़ा सा आदर सम्मान होता है भक्तों के प्रति, फिर आकर्षण होता है, फिर भक्ति क्रिया के प्रति आकर्षण होता है, और फिर धीरे धीरे ये बीज ये एक लता में बदलता है जब उसको श्रवण और कीर्तन का जल दिया जाता है। फिर ये लता बढ़ने लगती है, ब्रह्मांड को भेद देती है, ब्रह्मांड भेदी ध्वनि पूरी आकाश। आचार्य लिखते हैं कि ये जो लता निकलती है ब्रह्मांड को भेदते हुए, फिर द्वेजा को पार करती है, आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करती है, गोलोक में प्रवेश करती है, और इसका समापन होता है भगवान के चरण कमलों में जाकर। तो ऐसा ये मंत्र, ऐसा ये बीज है। हनुमान जी ने अंगूठी दी, सीता देवी को स्मरण हुआ, अपने सारे कष्टों को भूल गए, और फिर हनुमान जी ने और बातें बतलाई कि कैसे वो मिले श्री राम से, और फिर कैसे सारे वानरों ने सीता की खोज की इत्यादि, और फिर उन्होंने सीता से कुछ मांगा जो वो जाकर श्री राम को दे सकें, और सीता ने अपने बालों में लगा हुए छोटा सा अलंकार उनको दिया, और फिर हनुमान जी की एक सेवा पूर्ण हुई। लेकिन भक्त का ये लक्षण होता है, उनका गुण होता है कि केवल जो कहा जाए उतने से वो संतुष्ट नहीं होता, वो और सेवा करना चाहता है। ये भक्त का लक्षण है। अच्छे भक्तों में श्रेणियां होती हैं। एक श्रेणी का भक्त है कि जिससे जितना कहा जाए बस उतना कर लेता है। दूसरा श्रेणी का भक्त है वो गुरु के हृदय को समझता है और जो गुरु चाहते हैं उसको बिना कहे करता है। हनुमान जी सर्वोच्च श्रेणी के भक्त है। हनुमान जी अब इतनी सेवा से संतुष्ट नहीं हुए। ठीक है, सेवा क्या थी उनकी? सीता देवी को खोजना, सीता को ढूंढ लिया, अब वो जा सकते थे वापस। लेकिन हनुमान जी ने सोचा, थोड़ा सा रावण की शक्ति को देखता, कितनी शक्ति है, सुना बड़ा शक्तिशाली है रावण, तो थोड़ा सा देख कर जाते हैं, जाना तो है वापस, लेकिन थोड़ा बहुत जरा सेवा को एक्सटेंड कर लें, सेवा को थोड़ा बढ़ा लें जिससे श्री राम को प्रसन्नता हो। तो हनुमान जी ढूंढने लगे कि कहां से शुरुआत की जाए। तो उन्होंने सोचा ये अशोक वाटिका बड़ी सुंदर है, रावण को अति प्रिय है, ऐसे बताया गया था कि रावण को बहुत प्रिय थी। तो उन्होंने कहा कि रावण को बहुत प्रिय है ये अशोक वाटिका, सुंदर भी है, और मैं बंदर हूं, मैं वानर हूं, और वानरों को कोई सुंदर चीज ज्यादा देर तक अच्छी नहीं लगती है। आप देखते हैं हम लोग कभी कभी वृंदावन जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि वानर इधर से उधर घूमते हैं, कोई पेड़ पर चढ़कर जोर से हिलाते हैं, किसी और चीज पर चढ़ जाते हैं। तो फिर हनुमान जी ने कहा कि अब थोड़ा आनंद लेना चाहिए, शक्ति की परीक्षा करना चाहते थे कि कितनी शक्ति है। तो फिर उस समय हनुमान जी ने सारे वृक्षों को उखाड़ना शुरू किया। सोचिए कितनी मेहनत लगती है एक गार्डन बनाने में, पेड़ों को बड़ा बड़ा करने में, बड़ा सुंदर तरीके से। रावण बहुत अच्छी तरह मेंटेन करता था, उसको बहुत पसंद था रावण को, इसलिए बाग बहुत अच्छी तरह रखा हुआ था, कोई जरा भी इधर उधर नहीं, अच्छे फल। हनुमान जी ने सारे वृक्ष उखाड़ना, और वो जो हजार खंभों वाला वो जो उसने बहुत सुंदर वहां महल बनाया था, हनुमान जी ने घूसे मार मार के उसका सारा चूरा कर दिया उसको। सोचिए कितनी मेहनत लगी होगी बनाने के लिए, हनुमान जी ने बस सारा ढेर। तो जब ऐसा सब होने लगा, उत्पात होने लगा, रावण को सूचना मिली, कहा कि अशोक वाटिका को एक बंदर, एक वानर सब नष्ट कर रहा है। रावण बड़े क्रोध में आ गए, 80,000 सैनिक भेजे उसने, 80,000। रावण ने कहा तुरंत जाओ, कौन है, क्योंकि अशोक वाटिका उसको बड़ी प्रिय थी। और कहीं किया होता कोई आकर कहता कि एक वानर ने कुछ पेड़ वेड़ उखाड़ दिए, तो रावण कहते मेरे पास क्यों आए हो भाई, कोई वानर पेड़ उखाड़ कर जाओ तुम लोग कैसे सैनिक हो। लेकिन यहाँ था कि अशोक वाटिका और वो भी उसने वो जो वहां पर वो जो उसका महल था उसको चूर चूर कर दिया। रावण ने 80,000 सैनिक भेजे, हनुमान जी ने एक क्षण में सबको समाप्त कर दिया, केवल अपनी पूंछ हिलाई और सारे बैक टू गॉड हेड चले गए, हनुमान जी भी महाराज जी जाएंगे। सारे रावण को सूचना मिली, 80,000 सैनिक समाप्त। 80,000 सैनिक, ये वानर है कि क्या है। अपने सेनापतियों को बोला जाओ भाई तुम जाओ, वैसे भी खाली बैठे रहते हो, पगार लेते रहते हो, कुछ करते नहीं, काम करो। बड़े बड़े महारथी हनुमान जी ने समाप्त कर दिया, फिर और महान सेनापतियों को खत्म। रावण ने अपने पुत्र को बुलाया, अक्षय कुमार, कौन सा अक्षय कुमार हो उसका, रावण का पुत्र का नाम है, आजकल लोग बागे रखते मुझे, इसलिए रावण राज्य है, राम राज्य नहीं है। रावण को बुलाया, अक्षय कुमार जाओ बेटा, मेरा बेटा है, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, भेजो उसको, जाओ थोड़ा नाम करके आओ, पकड़ के लेकर आओ वानर को, ये सारे लोग बेकार में खाते पीते रहते, कुछ नहीं करते, सब मर गए। वहां गया, बड़ा भयानक युद्ध, हनुमान जी से युद्ध हुआ, हनुमान जी ने उसको भी मार दिया। रावण को सूचना, मेरा बेटा मारा गया। रावण ने अपने सबसे बड़े बेटे को बुलाया, इंद्रजीत मेघनाद, उसको बोला तुम जाओ, तुम युद्ध करो, अब देखो इज्जत का सवाल है, इतने हो गए यार, एक वानर से मर रहे हैं, त्रिलोकेश्वर, आप सोचिए उसकी क्या अवस्था हुई होगी। त्रिलोकेश्वर रावण, बड़े बड़े देवता कांपते हैं, एक बंदर ने उसकी सारे वो क्या बोलते हैं बम लगा दिए उसके। तो फिर मेघनाथ से युद्ध हो रहा है, हनुमान जी ने सोचा कि बहुत देर हो गई है, मुझे रावण को देखना भी है, रावण से मिलना भी है, वैसे चाहते तो वो मेघनाथ को भी ऐसे ही मार सकते, तो रावण को भी मार सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी हनुमान जी के लिए, और अगर ज्यादा क्रोध आता तो मार भी देते शायद। लेकिन हनुमान जी ने सोचा कि मैं काम करता हूँ, बस बहुत हो गया, अब थोड़ा आनंद और दूसरे तरह का आनंद लेना चाहते थे हनुमान जी। तो हनुमान जी ने कहा कि अब रावण को देखना, थोड़ा जाकर उसको समझाता हूँ मैं, शायद बुद्धि बदल जाए उसकी, और देखो तो सही क्या है इसमें, ये आदमी है कि क्या है, पता नहीं। तो फिर वो बंद गए, मेघनाथ ने एक अस्त्र छोड़ा और हनुमान जी ठीक है पाश में बंद करता, चाहते तो बनते नहीं लेकिन स्वीकार किया। तो फिर हनुमान जी, सीता देवी को बड़ा कष्ट हुआ, सीता देवी को नहीं जान रही थी ये तो हनुमान जी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब चाहे वो ऐसे जरा सा अपना शरीर हिलाएंगे सारा पाश जो है टूट जाएगा। लेकिन फिर भी सीता देवी दुखी हो रही थी कि हाय अब क्या होगा, रावण ने पकड़ लिया। और मेघनाथ बड़ा खुश हो रहा था कि देखो मैंने बड़ा बहुत विशाल कार्य किया, महान कार्य किया, एक बंदर को पकड़ लिया। ऐसे में फिर वो लेकर चले गए रावण के सामने ले जाने के लिए तैयार हुए। और हनुमान जी भी बड़े प्रसन्न थे, हनुमान जी जाना चाहते थे, देखना चाहते थे कौन है रावण, क्या शक्ति है। और दरअसल वो रावण से बातचीत करना चाहते थे, तो उन्होंने सोचा अच्छा मौका है, चलो जाकर बात करके आते हैं। पहले ये नहीं सोचा, पहले तो जितने आ रहे थे सबको मारते गए हनुमान जी, फिर बाद में आया कि बस बहुत ज्यादा हो गया, अभी कितने मार दिए पता ही नहीं, वो भी काउंट करने लायक नहीं थे उसमें। तो फिर उस समय हनुमान जी ने स्वीकारा और फिर वो बंद कर चले गए। तो फिर हनुमान जी रावण के महल में जाते हैं, बहुत सुंदर संवाद है, और फिर उसके बाद की सारी लीलाएं और हनुमान जी का वापस आना, ये सब हम लोग कल शाम को श्रवण करेंगे। कल ठीक समय पर आप लोग आइए, तो कल इस कथा में हम लोग ये हनुमान जी के और लीलाओं को श्रवण करेंगे और साथ ही साथ अन्य उनसे जुड़ी कथाओं को भी हम लोग सुनेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की, भगवान श्री रामचंद्र की, श्री श्री राधा गोकुलानंद की, हरे कृष्ण।